ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29। सर्व भूतस्थम आत्मानं सर्व भूतानि च आत्मनि इक्षते योगा युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम् आत्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भूतस्थम सभी जीवों में स्थित, आत्मानम परमात्मा को, सर्व सभी भूतानि जीवों को, च भी आत्मनि आत्मा में, इक्षते देखता है, योग युक्त आत्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह समदर्शन समभाव से देखने वाला। अनुवाद, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। आप भी बोलिए मेरे साथ साथ, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वो परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं, और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वो एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वो इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकते हैं, दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आततत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत है। स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फल स्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान का दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियां के दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी। ये श्लोक का अर्थ सबको पता चल गया है, समझे हैं ये श्लोक का अर्थ क्या है? सर्वभूतस्थम, सर्वभूतस्थम का मतलब है भूत का मतलब क्या है? जीव। और स्थ का मतलब विराजमान या स्थित है। भगवान यहां कौन किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान अपना भक्त अर्जुन को ये समझा रहे हैं गीता के वाणी। और ये गीता के वाणी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए भगवान यहां अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान है परम गुरु, आदि गुरु, और अर्जुन भगवान का शिष्य है। ये गुरु शिष्य का बीच जो प्रश्न और उत्तर हो रहा है, इसके माध्यम पूर्ण तत्व ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान हो रहा है। तो भगवान यहां अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मन, मैं हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, है ना। भगवान सब प्राणी के हृदय में विराजमान है। ये भौतिक जगत में जीव जो शरीर ग्रहण करता है, वो शरीर ग्रहण करते हुए करते समय भगवान भी उनके साथ परमात्मा के रूप में उसके साथ रहता है। जहां भी भौतिक शरीर है वहां ही भगवान का स्थिति अवश्य ही होगा। ईश्वरः, और कहीं भगवान बताया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हृद्देशे का मतलब, हृद का मतलब क्या है, हृदय, और देश का मतलब है स्थान। हृदय रूप स्थान में ईश्वर सर्वभूतानां, सर्व का मतलब है सब, सभी, भूत का मतलब है जीव, सभी जीवों के हृदय में भगवान विराजमान। एक मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है, एक जानवर का हृदय में भी भगवान विराजमान है, एक चिड़िया के हृदय में भी भगवान विराजमान है, एक कीड़े के हृदय में भी भगवान विराजमान है, एक पेड़ के हृदय में भी भगवान विराजमान है। किस रूप में? परमात्मा के रूप। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे का मतलब हृदय में, हर प्राणी के हृदय में मैं विराजमान हूं। हृदय में भगवान विराजमान है, और कौन विराजमान है हृदय में? हमारा शरीर के शरीर में जो हृदय है वहां कौन विराजमान है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा कौन है? भगवान। और आत्मा कौन है? हम है आत्मा, और भगवान है परमात्मा। हम अपना शरीर में स्थित हैं, परंतु भगवान हर प्राणी के शरीर में स्थित विराजमान। ये जीव और भगवान का, भगवान में अंतर है। कोई ऐसे बहुत सारे आदमी आजकल बोलते हैं ना कि मैं भगवान हूं। कितने सारे भगवान आजकल तैयार हो रहा है, परंतु अगर हम उनको पूछेंगे कि आप हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, तो वो उसका जवाब क्या देगा? तो उससे हमें पता चलता है भगवान और जीव में अंतर क्या। हम सब जीव हैं, जीवात्मा हैं, परंतु भगवान है परम आत्मा। तो इस श्लोक में सर्वभूतस्थम आत्मानम, मैं हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे प्राणियों भी, सारे जीवों, जीव भी हम में विराजमान। ये है भगवान का एक अद्भुत विशेषता, और भगवान का ये अचिंत शक्ति। भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, और हर प्राणी भी भगवान में विराजमान है। भगवान ऐसे गीता में हमें समझा रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, फिर भी भगवान कह रहे हैं क्या, हर व्यक्ति के हर प्राणी के हृदय में मैं रिधि सन्निविष्ट हृदय में विराजमान और मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। और हमसे स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति का मतलब साधारण हिंदी में स्मृति, स्मृति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या है? और एक शब्द क्या है? यादगार। यादगार जो हमारा जो याद है वो है, वो कैसे हो रहा है? जो स्मृति स्मरण जो हो रहा है कैसे होता है? भगवान का कृपा से होता है। मत्त स्मृति ज्ञानम, और ज्ञान भी भगवान ही प्रदान करते हैं। और अपोहनम च, और उस स्मृति को और ज्ञान को भगवान अगर चाहते हैं तो उसको हरण कर लेते, ले सकते, हरण कर सकते। अपोहनम, ऐसे कभी हमें स्मृति होता है और विस्मृति भी होता है, यादगार होता है और हम भूल भी जाते हैं। वो कैसे होता है? भगवान का ही कृपा से होता है। हमारा हृदय में स्थित होकर भगवान हमें स्मृति ज्ञानम और अज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे जो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इक्षते योग युक्तात्मा। योग युक्तात्मा का मतलब क्या है? जो योग के द्वारा भगवान के साथ युक्त हुए हैं। योग का मतलब क्या है? युक्त होना। दो के साथ दो, टू प्लस टू, दो के साथ जब दो युक्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? योग। योग और वियोग है ना, जब युक्त होता है तब है योग, और जब बिछोड़ जाते हैं तो है वियोग। तो ये योग जो है, योग योग का जो पद्धति है उसका उद्देश्य क्या होता है? युक्त, युक्त करना। किसके साथ? भगवान के साथ, है ना। योग का जो पद्धति है, बहुत सारे योग हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है। ये सारे योग का, योगों का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ हमें युक्त करना। ना क्या और किसी के साथ युक्त करना। युक्त, योग का मतलब है युक्त होना। तो किसके साथ जो ये योग जो हम करते हैं, योग का जो अभ्यास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, होना चाहिए? किसी के साथ युक्त होना। किसके साथ युक्त होना? भगवान के साथ। याद रहेगा ना, बहुत सारे आदमी योग करते हैं, क्यों? वो चाहते हैं कि जैसे ये शरीर में ताकत हो, उसके लिए शरीर स्वस्थ हो। ऐसे कोई आदमी योग करते हैं सिद्धि प्राप्त होने की। तो सिद्धि का मतलब क्या होता है? तो कोई असाधारण कार्य करना। योग का अष्टांग योग का आठ प्रकार का सिद्धि होता है, जैसे अनिमा, लघिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति, इशिता, वशिता, कामवशयिता। ये सब योग का सिद्धि होता है। अनिमा का मतलब क्या है? बहुत छोटा बन जाना, अनु जैसा, बहुत छोटा। लघिमा का मतलब क्या है? लघु का मतलब हल्का हो जाना। ऐसा योग सिद्धि होता है। योगी बहुत छोटा बन सकता है और योगी बहुत बड़ा भी बन सकता है, बहुत हल्का भी हो सकता है। जैसे कि वो इतना हल्का हो जाता है कि वो आकाश में उड़ सकता है। और प्राकाम्य प्राप्ति जो चाहता है वो मिल जाता है उसको। ऐसे ईशिता वर्षिता, तो ये जो शक्ति जो है ये क्या योग का उद्देश्य है? ये शक्ति प्राप्त होना क्या योग का उद्देश्य है? आप देखिए, आप भगवान का लीला, कृष्ण का वृंदावन लीला के बारे में आप सुने होंगे, है ना, या पढ़े होंगे। वृंदावन में बहुत सारे असुर आता था, कंस का जो मित्र था वो असुर ने किस रूप में आया करता था, एक अद्भुत रूप लेकर आता था। जैसे पूतना कैसी आई थी, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, आपको याद है पूतना किस रूप ग्रहण करके आई थी? पूतना एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आई। पूतना का ये पूतना इतना सुंदर थी देखने में उस समय, तो हर वो सोचने लगा कि शायद लक्ष्मी देवी आ गई। परंतु असल में पूतना का रूप कैसी थी, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कुत्सित, देखने में बहुत खराब था, गंदा था। परंतु ये ऐसे रूप ले लिया, कैसे किया, क्यों, कैसे संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? योग के प्रभाव से, योग का सिद्धि के प्रभाव से। अघासुर एक सांप के रूप में आया, और एक कोई मामूली सांप नहीं, इतना विशाल एक सांप था, सांप के रूप में आया कि जब कृष्ण और गोप बालकों ने गाय चराने के लिए जा रहा था, तो अघासुर का मुंह का खुला हुआ मुंह देखकर वो सोचा कि ये शायद कोई पर्वत का गुफा होगा, और ये गाय समेत सब उसका मुंह में घुस गया था। तो आप सोचिए उसका रूप कितना विशाल था, क्योंकि सारे गाय, हजारों गाय और हजारों गोप कुमार, गोप ग्वाल बाल, कृष्ण का गोप सखा उसका मुंह में घुस गया। तो कैसे संभव हुआ इतना विशाल रूप ग्रहण करना? योग सिद्धि के प्रभाव से। ऐसे आप जानते हैं अघासुर आया, बकासुर आया। बकासुर कौन था, कैसे आए? एक बक पंछी के रूप में आया, पर विशाल पर्वत की तरह एक विशाल रूप लेके आया। कैसे संभव हुआ? योग के प्रभाव से। तो देखिए, जो योग साधन करके ये शक्ति प्राप्त तो हुआ, परंतु भगवान को साथ युक्त नहीं हुआ, उसके योग का क्या सिद्धि का सफलता हुआ? नहीं। योग का असल उद्देश्य क्या होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। परंतु ये सब क्या किया, योग का सिद्धि प्राप्त तो हुआ, परंतु भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के वजह उन्होंने भगवान को शत्रु बन गए। तो योग साधन करने का उद्देश्य ऐसे हमें समझना पड़ेगा। तो योग का उद्देश्य क्या होता है, योग साधन क्यों करना चाहिए? भगवान के साथ युक्त होने, भगवान के साथ युक्त होने, सिद्धि प्राप्त होकर असुर बनने के लिए योग साधन करना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं। भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से बिना और किसी उद्देश्य लेकर भी योग साधन नहीं करना चाहते। तो जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस योग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आप जानते हैं, उसको भक्ति कहा जाता है। जब भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का जब उद्देश्य लेकर हम कुछ कार्य करते हैं उसे भक्ति योग कहा जाता है। और भक्ति का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ प्यार की संपर्क। प्यार की संपर्क स्थापन करने का जरूरत क्यों है, क्योंकि प्यार से ही, प्यार के माध्यम ही, प्यार के द्वारा ही केवल हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भगवान के साथ संपर्क जोड़ना संभव नहीं। और भगवान के प्रति जब हमारा हृदय का प्रेम अर्पण होता है तो उस प्रेम को भक्ति कहा जाता है। और प्रेम का कार्य कैसे होता है, हर शक्ति का, हर प्रक्रिया का एक विशेष गुण रहता है। तो जो प्यार जो है, प्यार से क्या होता है, प्यार एक दूसरे को नजदीक लाता है ना, है ना। जब हम किसी के साथ, हमारा जब प्रेम के संपर्क बनता है तो हम उनके साथ रहते हैं, युक्त हो जाते हैं, है ना। और विद्वेष से क्या होता है, दूर चले जाते। तो प्रेम और द्वेष ये दो विपरीत क्रिया है। प्रेम से हम युक्त होते हैं और द्वेष से हम वियुक्त हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम अर्पण करना चाहिए। क्योंकि प्रेम, प्रेम ही केवल भगवान के साथ हमें युक्त कर सकते। अच्छा, आप विचार कीजिए, प्रेम कहाँ है, प्रेम कहाँ रहता है, हाँ, हृदय दिल में रहता है या क्या सर में रहता है। अच्छा, प्रेम दिल में रहता है। अच्छा, दिल में कौन है, हाँ, और साथ साथ कौन है, आत्मा। तो देखिए, दिल में प्रेम है, दिल में आत्मा है, दिल में परमात्मा है। तो आत्मा के लिए अपना प्रेम भगवान को अर्पण करना क्या कोई कठिन कार्य है, नहीं, ये बहुत सरल, साधारण और सहज कार्य है। बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो है हमारा दिल में और हृदय में भगवान विराजमान है, उनको ही अर्पण करना है। तो जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम हम अर्पण करते हैं तो हम भगवान के साथ, हमारा संपर्क बन जाता है। अच्छा, आप देखिए, प्रेम जो है, प्रेम कैसा है, प्रेम दो पक्ष को ही प्रेम करना, दान और प्रतिदान होता है। हम अगर किसी को प्रेम कर, प्यार करते हैं, वो अगर हमको प्यार नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो प्रेम सफल नहीं है, है ना। तो अब ये सवाल होता है कि हम भगवान को हमारा प्रेम अर्पण करेंगे, अगर भगवान हमें प्रेम नहीं अर्पण करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रेम व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो अब हम थोड़ा विचार करेंगे कि भगवान, हम जब भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान हमें प्यार करेंगे या नहीं। तो ये विचार हम ऐसे कर सकते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, भगवान क्या हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हाँ, बचपन से हम कितना खाना खाया, हजारों मन खाना खा चुके हैं, है ना? तो खाना कौन भेजा था? कौन भेजा खाना? भगवान भेजा। क्यों भेजा? भगवान हमें प्यार करते हैं उसलिए, है ना? अगर भगवान हमें प्रेम नहीं करते थे तो भगवान क्यों भेजते थे? अच्छा, खाना पीना, पानी, पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो अब देखिए पानी कहाँ है? पानी तो ऐसे जमीन में पानी नहीं रहता है, पानी कहाँ रहता है? पानी का स्रोत है समुंदर। तो ये तो एक तो समुंदर, देखिए उज्जैन से समुंदर कितनी दूर है? हाँ, होगा कम से कम 1000 मील, है ना? तो 1000 मील से पानी यहाँ लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। और बात यह है कि समुन्द्र का जो पानी है वो नमकीन है, वो पानी हम पी नहीं सकते हैं, है ना? तो आप देखिए सूर्य के माध्यम पानी का क्या हो रहा है? बाष्पीभूत हो रहा है पानी, इवापोरेशन। पानी बाष्प बनकर, जब बाष्प बनता है तो क्या होता है? पानी ऊपर चला जाता है। तो बाष्पभूत पानी क्या होता है? बादल बनता है, है ना? अच्छा, बादल तब हवा से बादल उज्जैन के ऊपर आ जाता है, हवा के प्रभाव से बादल उज्जैन के ऊपर आकर, और उसके बाद क्या होता है? ऊपर ठंडा होने से वो बाष्प घनीभूत हो जाता है, फिर वो पानी बन के ऊपर से बारिश के रूप में गिरता है, है ना? और जगह जगह में गिर के वो पानी इकट्ठा होकर नदी के रूप में बहकर यहाँ आ गया, क्षिप्रा नदी के रूप में, गंभीर नदी के रूप में। तो को ये सारे आयोजन कौन कौन किया है? हाँ, कौन किया? सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों कर रहे हैं? भगवान हमें प्यार कर। अच्छा, पानी खाना पीना, उससे भी जरूरी क्या होता है? उससे भी अधिक प्रयोजन किसका होता है? जीना रहने के, जिंदा रहने के लिए हवा, श्वास लेना। हम किस श्वास कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना? और ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसे हम ऑक्सीजन लेते रहते थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते थे तो क्या होता? वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता था, ऑक्सीजन नहीं रहता था। परंतु ये हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अच्छा, क्योंकि पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ा, तो उसके कारण हमारा ऑक्सीजन का कमी नहीं हो रहा है और पेड़ पौधों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कमी नहीं होता। तो ये आयोजन कौन किया है? क्यों कर रहे हैं? भगवान हमें प्यार कर रहे। अच्छा, और एक बड़ा विचार देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, है ना? और हम कहाँ हैं? पृथ्वी के ऊपर है या अंदर है? हाँ, ऊपर है। पृथ्वी गोल है और हम पृथ्वी पृष्ठ में हैं, पृथ्वी के ऊपर है, और पृथ्वी घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है, लगभग 1000 किलोमीटर के घंटा में इस वेग में घूम रहा है। कोई गोल आकार वस्तु के ऊपर अगर कुछ रहता है और वो घूमता है तो क्या होता है? गिर जाता है। तो हम पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी घूम रहा है तेज से, हम गिर रहे हैं, हाँ नहीं गिर रहे है ना, क्यों नहीं गिर रहे हैं? हाँ अच्छा, महिमा के आगे पीछे और क्या है? हम क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि माध्याकर्षण, एक शक्ति हमें ऐसे खींच के रखा है ना। ये शक्ति अगर नहीं रहता तो हम ना जाने कहां चले जाते, है ना। तो ये जो शक्ति, जो ये कौन खींच रहा है हम सब, हाँ कौन को? अच्छा ग्रेविटेशन, माध्याकर्षण शक्ति है, परंतु ये शक्ति किसने किसने तैयार किया है? भगवान ने। क्यों किए हैं? फिर सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान हमें प्यार करते। तो आप सोचिए, मैं पहले बोला था जो प्यार जो है दो पक्ष के ही करना चाहिए। एक पक्ष प्यार करता है, दूसरा नहीं करता है, तो वो प्यार क्या सफल होगा, सार्थक होगा? नहीं होगा। तो आप सोचिए, भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, हम क्या भगवान को प्यार कर रहे हैं? हाँ, तो ये गलत फहमी किसका है? हमारा है। भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, परंतु उस प्रेम का प्रतिदान हम नहीं दे रहे। तो अगर हम अगर भगवान को प्यार करते करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? हमारा प्रेम सफल होगा। जो प्यार करता है दूसरे ने, जब उसको प्यार करते हैं प्रतिदान के रूप में, तब उसका मनभाव कैसा होता है? आनंद होता है ना। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, जब लड़की लड़का से प्यार करना शुरू करता है तो लड़का का मनोभाव कैसा होता है? आनंद होता है मन में। तो आप सोचिए, भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, और जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान का मनोभाव कैसा होता है? हाँ, भगवान को बहुत आनंद होता है। तो अब ये बात ये है कि हम बोल इस भौतिक जगत में हम बोलते हैं ना कि एक लड़का और लड़की के बीच प्यार का संपर्क, परंतु असल में वो प्यार नहीं। ये भौतिक जगत में जिसको हम प्यार कहते हैं वो प्यार या प्रेम नहीं, वो असल में क्या है? वो है काम। अपना इंद्रिय को सुख देने के लिए जो चेष्टा है वो काम प्रेम है। परंतु जब भगवान के इंद्रियां के हम सुख देने के, तृप्ति साधन करने के प्रयत्न करते हैं, उसको ही प्रेम का। आत्मेन्द्रियो प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रीति इच्छा और ए प्रेम नाम। तो प्रेम और प्यार भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, अब हमारा कर्तव्य है कि भगवान को उस प्रेम का प्रतिदान देते रहे। और ये जो भगवान के प्रति हमारा हृदय का जो प्रेम अर्पण होता है, उसको ही भक्ति कहा जाता है। हम यहां सब क्या कर रहे हैं? हम आज ये शाम को यहां इकट्ठा क्यों हुए? हम इकट्ठा हुए हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए, है ना। भगवत गीता का पाठ हो रहा है। भगवत गीता क्या है? भगवान का मुखारविंद से जो अमृत रूप ज्ञान निकला है वो है भगवत। और इस भगवत गीता में भगवान क्या कौन से निर्देश दे रहे हैं, भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, भगवान उनके साथ युक्त होने का तरीका हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका जो है उसे ही योग कहा जाता है। वो कौन सी योग है, वो है भक्ति। देखिए कर्म जब भगवान के उद्देश्य होता है उसको कर्म योग कहा जाता है। ऐसे हर कर्म को, हर काम को क्या हम कर्म योग कहते हैं, नहीं। तो कौन से कर्म कर्म योग बनता है, जो कार्य भगवान के साथ भगवान के प्रति अर्पण होता है वो है कर्म योग। ज्ञान, ज्ञान कब योग बनता है, ज्ञान प्राप्त होना है क्या ज्ञान योग होता है, नहीं। ज्ञान जब भगवान के लिए होता है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को, भगवान के महिमा समझने के लिए जो ज्ञान है उसको ही ज्ञान योग कहा जाता है। और जब हमारा हृदय का प्रेम जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भक्ति कहा जाता है। और जब हम भगवान को भक्ति करते हैं, हमारा हृदय का प्यार जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तब हमारा जन्म सार्थक होता है। और सार्थक होने का मतलब कैसा होता, क्या होता है, सार्थक होने का मतलब है हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है ना। तो हमारा चाहना क्या है, हम क्या चाहते हैं, आप सोचिए। ऐसे आप स्वीकार करें या करेंगे या नहीं, परंतु हर आम आदमी क्या चाहता है, रुपया चाहता है ना। क्यों रुपया चाहता है, हाँ वो सोचता है कि रुपया मिलने से हमारा कामना पूर्ति हो जाएगी। परंतु अच्छा आप सोचिए, रुपया अगर मिला तो क्या करेंगे, जब रुपया मिलता है तो रुपया से वो क्या करना चाहता है, भौतिक जगत का सारे कार्य करने का। वो सोचता है कि हम बहुत एक बहुत सुंदर मकान बनाएंगे। मकान बनाने का जरूरत क्या है, रहने के लिए है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वो चाहता है कि हम हर समय रहेंगे, मतलब वो चाहते हैं कि मेरा मृत्यु ना हो, है ना। तो हमारा पहला चाहना क्या है, हम हमारा मृत्यु ना हो, हम अमर बन जाए, है ना। तो हमारा ऐसे तीन चाहना होता है, हम हमारे जितने सारे चाहना है वो सारे चाहना तीन मुख्य चाहना में उसका समाप्ति होता है। वो क्या है, तीन मुख्य चाहना क्या है, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम अमर बनना चाहते हैं, मतलब हम मृत्यु को हम जय करने का प्रयास करते हैं। हम ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं और हम आनंद चाहते हैं। ये तीन चाहना हम हर व्यक्ति का है। हम मरना नहीं चाहते हैं, हम सबको जानना चाहते हैं और हम आनंद चाहते हैं। हम क्यों ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप में ये तीन वस्तु हमारे साथ साथ है। हमारे स्वरूप में हम आत्मा है और आत्मा सत चित आनंद है। सत का मतलब क्या है, नित्य, जो हर समय रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है। सत का मतलब है अविनाशी। चित का मतलब है चेतना, ज्ञान, और आनंद, आनंद। तो हम हमारा आत्मिक स्वरूप में हम सच्चिदानंद हैं। तो आत्मा सच्चिदानंद है, परंतु ये शरीर भौतिक है। ये शरीर क्या अमर हो सकता है? नहीं। शरीर अज्ञान है। शरीर में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है? नहीं। और ये शरीर के माध्यम आनंद प्राप्ति हो सकता है? नहीं। तो अगर हम ये तीन वस्तु चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का तरीका कैसा है? किस उपाय से, किस तरह हम हमारा आत्मिक या आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते? कैसे? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से। भगवान से बिछोड़ जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं और यहां ये भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। तो जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तब ये भौतिक जगत का जो बंधन, वो बंधन से हमें छुटकारा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ युक्त होने से हम हमारा आत्मिक स्वरूप में हमारा अवस्थिति होता है। इसका एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, एक चिंगार आग है ना, परंतु वो बहुत क्षुद्र है। चिंगार जब आग से निकलकर तो भस्म में गिरता है तो क्या होता है? चिंगार भी भस्म बन जाता है ना? क्षुद्र होने के कारण वो भस्म से गिरने से वो उसका जो चिंगार की आग की जो गुण था उसको खो बैठता है। ठीक है, चिंगार भस्म बन गया, तो अब अगर उस चिंगार को उसको फिर हम आग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको लेके फिर आग में डालना पड़ेगा। हाँ, वो जो ये जो था कण, चिंगार का जो कण, जो भस्म का कण बन गया, उसको हम अगर आग में फिर वापस ले जाते हैं तो वो आग बन जाता है ना। भगवान के साथ हमारा संपर्क बिछोड़ जाने के कारण हम ये भौतिक जगत में आकर हम भी भौतिक बन गया है ना। ये शरीर है भौतिक और ये शरीर को हम हमारा स्वरूप समझ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? हमारे ये भौतिक शरीर को स्वरूप समझने के कारण हमें कष्ट मिल रहा है। और जो हम हैं वो हम नहीं बन सकते। जैसे सत चित आनंद अविनाशी नहीं बन सकते, शरीर कभी अविनाशी नहीं बनेगा। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। ये शरीर का जन्म हुआ तो शरीर का मृत्यु अवश्य ही हो। अविनाशी, परंतु आत्मा जो है वो है अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता। तो हमारा आत्मिक गुण जो है वो ये शरीर के माध्यम प्राप्त होने का कोशिश कर रहे हैं और उसके कारण हमें हमारा मन में ये इस असफलता के कारण हमारा मन में खोब होता है, कष्ट होता है। जो हम जो चाहता है जब उसको हमें नहीं मिलता है तब क्या होता है? कष्ट होता है। हम अमर बनना चाहते हैं परंतु हमारा मृत्यु होता है, उसके कारण हमें कष्ट हो रहा है। हम ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं परंतु हम अज्ञान में फंस गए हैं, उसके कारण हमें कष्ट हो रहा है। हम आनंद चाहते हैं परंतु आनंद की जगह हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो ये जो भौतिक जगत का जो स्थिति है, इस स्थिति से हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? चिंगार भस्म बन गया, अब चिंगार को अगर आग बनाना है तो क्या करना चाहिए? चिंगार के आग है या भस्म है? चिंगार आग है, परंतु भस्म में गिरने के कारण भस्म बन गया। तो अगर हम उसको फिर से उसका जो अग्नि का जो शक्ति प्रयोग करना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उसको लेके आग में, तो यहां आग कौन है और चिंगार कौन है? चिंगार है हम और आग है भगवान, और भस्म कौन है? भस्म है इस भौतिक जगत, इस भौतिक जगत है भस्म। हम है चिंगार, भगवान है आग। तो हम अगर फिर से चिंगार बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? फिर से आग में वापस जाना पड़ेगा, मतलब भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना पड़ेगा। संपर्क जोड़ने का तरीका कैसा है? किस शक्ति के द्वारा हम संपर्क जोड़ते हैं बताइए? हम कुछ पहले बताया था, हाँ, प्यार। बहुत अच्छा, प्यार एक शक्ति है, ये शक्ति के द्वारा हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं, भगवान के साथ हम युक्त हो सकते हैं, है ना। तो ये जो पंथा जो है इसको सही ढंग से ग्रहण करना चाहिए, इसको आचरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बताइए।
आप स्मृति विस्मृति, कब स्मृति स्थापित हो जाए और विस्मृति द्रोहित हो जाए, और परमात्मा का इसमें कार्य है?
स्मृति जो है किसका स्मृति होना चाहिए, किसका किसका याद होना चाहिए? हाँ,
स्मृति इस प्रकार की, इस प्रकार
नहीं, याद किसके किसको होना चाहिए? भगवान को याद होना चाहिए, है ना।
भगवान को तो है, हम
है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको तो स्मृति है, विस्मृति का तो अब प्रश्न नहीं है।
हरण कर लेता है तो किस स्थिति में वो हरण कर लेता है और किस स्थिति में प्रदान कर देता है?
भगवान को नाम याद करने से, भगवान को नाम ग्रहण करने से भगवान को स्मृति आता है और विस्मृति दूर हो जाता है।
भगवान को भूल जाना,
हाँ,
विस्मृति हो जाएगी भगवान,
विस्मृति का मतलब भगवान को भूल जाना। भौतिक जगत में आकर हम भगवान को भूल गए, तो अगर भगवान को याद करने करना है तो कैसे करना चाहिए?
प्रेम से
भगवान के बारे में सुनना, भगवान को बारे में कीर्तन करना, भगवान को नाम स्मरण करना, जप करना, ये अभ्यास करने से, उसके कारण हम ये अभ्यास करते हैं। हम कितने माला आप जप रहे हैं आज?
हम तो कभी छह, कभी आठ, कभी दो।
कभी छह, कभी आठ, कभी दो। अच्छा, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ये नाम जप?
भगवान का,
भगवान का स्मरण करने से। तो स्मृति, ऐसे स्मृति के का जो अभ्यास हो रहा है स्मरण का, ये एक ऐसा ही तरीका है, ठीक है। भगवान को नाम जपते रहिए। भगवान को हम भूल गए हैं तो इसलिए हम याद करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका कोई कोई व्यक्ति के साथ आपका परिचय था बहुत साल पहले, तो कोई आकर आपको बताया याद है फलाना आदमी के बारे में, तो आप क्या करते हैं? आप तो भूल गए हैं। तो उसका नाम शायद है, उसका नाम है रामदास। तो जब बोलते हैं कि रामदास को याद है, तो आप क्या बोलते हैं? रामदास रामदास रामदास, हाँ हाँ याद आ गए हैं रामदास, है ना। तो ऐसे ही हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, याद आ रहे हैं। किसका याद आ रहे हैं?
भगवान का,
भगवान का याद आ रहा है। तो इसलिए भगवान को याद करने के लिए हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चाहिए।
और महाराज आप हमको बहुत याद आते थे, हम सो रहे हैं तो आप दिखाई देते थे, नहा रहे हैं तो आप हमारे साथ बड़े समुद्र में स्नान कर रहे हैं, और हमको बड़ी घबराहट होती थी वहां से भागने की, तो बड़ी मुश्किल से हम अपने को संभाल सके।
हम भी आपको याद करता था।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। महाराज मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे योग पद्धतियों के बारे में बताया है, तो ऐसी कोई योग पद्धति है जिससे दूसरे ग्रहों पे जाया जा सकता है?
ऐसी कोई योग पद्धति
जिससे दूसरे ग्रहों पे जाया जा सकता है? जीव कभी दूसरे ग्रह पे जा सकता है?
हाँ, हाँ। जैसे ये जो है योग शक्ति जो है, जैसे मैं बताया, एक है, एक सिद्धि का नाम है लघिमा, बहुत हल्का हो जाना। जब तुम हल्का हो जाते हो तब तुम ऊपर जा सकते हो, है ना। जब भारी बन जाते हैं तो नीचे गिरता है, जब हल्का हो जाता है। तुम देखा बैलून, बैलून में क्या डालते हैं? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्का है, उसके कारण बैलून ऊपर चला जाता है। तो ऐसे योगी को ऊपर जाने का क्षमता प्राप्ति होता है ये लघिमा सिद्धि के द्वारा। अच्छा, और योगी को पता लगता है कि ये जो स्पेस जो है, मतलब स्पेस का हिंदी क्या है?
अंतरिक्ष।
अच्छा, तो उसमें भी मार्ग है, जैसे रास्ता होता है ना, महाशून्य में भी वैसे रास्ता है। तो वो रास्ता कभी कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। जैसे पक्ष होता है उत्तरायन दक्षिणायन, ये सूरज जब ऊपर के उत्तर के भाग में चलते हैं तो ऊपर का जो उत्तरायन के समय में ऊपर जाने का जो रास्ता वो खुल जाता है, और दक्षिणायन के समय में नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। तो जो और ऐसे उत्तरायण के समय में विशेष अर्चिरादि मार्ग में जाने का संभावना योगी को मिलता है। तो क्या करते हैं, उसी समय शरीर छोड़कर आत्मा को लेकर वो दूसरा ग्रह में जा सकते हैं। ऐसे तो योगी का एक क्षमता होता है। और जो एक विशेष योगी जो है, भी महायोगी जो है, उन्होंने एक ग्रह से केवल नहीं, एक जगत से दूसरा जगत में जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी इस भौतिक जगत में आते हैं, इस धरती पे आते हैं, कभी स्वर्गलोक में जा सकते हैं, कभी पाताल लोक में चले जाते हैं, जहां भी जरूरत होता है वो चले जाते हैं झट से। ऐसा शक्ति मिलता है।
एक और क्वेश्चन पूछना है, वो ये जैसे इस श्लोक में बताया कि जो योगी होते हैं वो सभी को समान रूप से देखते, सभी में परमात्मा देखते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भौतिक जगत में रहके ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम सबको समान रूप से देखें? मतलब इसका अर्थ क्या है, समान रूप से देखना, सभी से समान व्यवहार करने का अर्थ?
देखो, हम जब इस स्थिति में है तब हम कैसे देखते हैं, कोई थोड़ा बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे देखते और भी छोटा है। परंतु जब हम ऊपर जाते हैं तब सबको समान दिखाई देता है। जब हम बहुत ऊंचे चले जाते हैं तब हमारे दृष्टिकोण से सबको समान दिखाई देता है। जब समझा,
अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और कोई अच्छा, तो हमें क्या दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए?
ये सवाल है कि तुम कहाँ हो, यहाँ हो या ऊपर हो? तुम अगर यहाँ रहोगे तो थोड़ा सा संघर्ष होने का संभावना रहता है, परंतु तुम अगर बहुत ऊपर चले गए हो तब और वो संभावना नहीं रहता है। तो जो योगी, जो मतलब जो महान महात्मा है, वो महान महा अनुभव है, उसका मनोभाव बहुत उदार हो जाता है और उसके कारण वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। ऐसे हो दिखाई दे सकता है कि वो है यहाँ, परंतु उनका मनोभाव बहुत ऊंचे बन जाता है और उसके कारण उनका मन में द्वेष नहीं रहता है और उनका अनुभव जो है वो सबके प्रति समान भाव, समता के दृष्टि से।
गुरु महाराज, क्या भगवान भी ऐसा, मतलब भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते
हैं? भगवान तो सबसे बड़ा समदृष्टि है, समदृष्टा है, समदर्शी है नाम तुम्हारा, है ना? भगवान समदर्शी है। जैसे पिता बच्चे हैं, चार पांच बच्चे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, परंतु पिता के दृष्टिकोण से क्या बड़ा छोटा होता है? पिता के दृष्टिकोण से सब समान।
जैसा भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या भगवान, जैसे दो तरह के लोग, एक तो भक्त होते हैं और कुछ लोग भगवान से ही द्वेष करते हैं, तो क्या भगवान भक्तों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरों को, या भगवान भक्तों से थोड़ा ज्यादा?
भगवान सबको प्यार करते हैं, परंतु जब भक्त बोलता है कि मैं आपका साथ आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान बोलता है ठीक है, बहुत मैं तुमको सेवा करने का मौका दूंगा। और जो विदेशी है वो बोला मैं आपको नहीं मानना चाहता हूँ, भगवान बोलता है ठीक है, तुमको ना मानने का बहुत सारे सुजोग मैं तुमको प्रदान करूंगा। हमसे दूर भागने का, दूर जाने का एक बहुत सुंदर आयोजन मैं करके दूंगा। भगवान क्या करते हैं, समदर्शी होने के कारण भगवान सबका मनोभाव मनकामना पूर्ण करते हैं। जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं भगवान उसको भक्ति देते हैं, जो भगवान का शत्रु बनना चाहते हैं भगवान उसको विद्वेष भाव देते हैं, जो भगवान का नजदीक आना चाहते हैं भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं, जो भगवान से दूर भागना चाहता है भगवान उससे और भी दूर जाने का सुजोग देते हैं। हरे कृष्ण। ओके, वी कैन हैव अ लिटिल कीर्तन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। নিত্যায় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। गौर प्रेमानंदे हरि श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा मदन मोहन की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद।